तो जिज्ञासु का मतलब सीधा सीधा एक ही है, जिसकी जिंदगी का ईश्वर प्राप्ति के अलावा कोई उद्देश्य ही नहीं है, वो केवल ईश्वर के लिए जीता है, इसके अलावा जीने का सतयुग संसार में कर्तव्य नहीं है। लेकिन वैसा जिज्ञासु पता नहीं इस जन्म में हम बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो भी स्मरण भी करता है, सत्संग भी सुनता है, कुछ सत्पुरुषों की बातों का अध्ययन भी करता है और नॉर्मल सांसारिक जीवन जैसा सब लोग व्यतीत करते हैं वो भी व्यतीत करता है, तो ये जिज्ञासु की परिभाषा में नहीं आता। यदि सही परिभाषा, शुद्ध परिभाषा यदि जाननी है तो समता विलास में का अंतिम चैप्टर है जिज्ञासु का निर्मल का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा और वो बड़ी गहरी बात है। मैं नहीं समझता कि उस प्रकार का जिज्ञासु के बारे में आपका प्रश्न है। तो हम जहां खड़े हैं वहां यदि जिज्ञासा की बात की जाए तो हम में से जिसने भी ईश्वर के महत्व को समझा है और साथ ही अपनी स्थिति को भी समझा, स्थिति से मेरा मतलब है कि आम व्यक्ति चाहे वो सत्संगी हो चाहे वो संसारिक हो, आम व्यक्ति है वो अपने आप को देह करके ही देखता है और देह करके ही जानता है। और जैसा उसने सुन रखा है ईश्वर के बारे में, कारणकर्ता परमेश्वर है, वो बात भी उसने सीख रखी है, उस ईश्वर के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ उसकी याद करता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि ईश्वर प्राप्ति का मतलब क्या होता है। इसलिए वो ज्यादातर भटकता है संसार में और जो उसकी सही आध्यात्मिक यात्रा होनी चाहिए वो सही यात्रा नहीं होती। चलता तो है, वो समझता भी है कि मैं चल रहा हूं, लेकिन वास्तव में उसकी चाल सही नहीं होती। उसका कारण यही है कि जब तक ऋषियों की बात को हम वैसा ही ना समझें जैसा वो समझाना चाह रहे हैं, कुछ का कुछ समझते रहे हैं, तो फिर हमारे जैसे जिज्ञासुओं के मन के अंदर उलझन बनी ही रहेगी। कई बार आपके सामने महाराज जी की वाणी रखी गई है, बड़ी साधारण सी वाणी जो आप शायद रोज ही रिपीट करते होंगे, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति और जात है ही। शायद ही कोई इसका ठीक ठीक विश्लेषण करता हो और इसको समझने की कोशिश करता हो, शायद ही कोई, ऐसा नहीं कि कोई नहीं होता, लेकिन ज्यादातर सत्संगी ऐसे ही मिलेंगे जो इस पर विचार नहीं करते, इसको सुनते भी हैं, इसको गाते भी हैं, इसको पढ़ते भी हैं, लेकिन एक साधारण सा दोहा जो हमको नजर आता है, ये साधारण नहीं है। इस एक पर ही यदि आप गहरा मनन करोगे तो अपने बारे में तो निश्चय होगा कि कम से कम कि मैं कौन हूं, ये वाणी तो मेरे लिए प्रकट हुई है, गुरु के लिए तो प्रकट नहीं हुई, ये वाणी तो मेरे लिए प्रकट हुई। और ये वाणी मुझको जागरूक कर रही है, मुझको गाइड कर रही है या मेरा मार्गदर्शन कर रही है कि ये संसार सराय की तरह से है। और हम संसार को केवल बाहर का संसार समझ लेते हैं, जबकि सत्पुरुष के दृष्टिकोण से देह और संसार एक ही चीज है। महाराज कहते हैं देह करके ही संसार है, देह और संसार की उत्पत्ति एक साथ होती है। तो ये संसार देह ये कभी भी अलग नहीं रह सकते, ये सदैव एक ही मैटेरियल के बने हुए हैं और एक ही जैसे। लेकिन विचार करके देखो, कभी भी आपके अंदर ये वहम आ सकता है कि मैं संसार हूं, ये वहम आपके अंदर कभी नहीं आएगा। और ये वहम आपको पकड़े रखता है कि मैं शरीर हूं, जबकि शरीर और संसार में भेद ही कोई नहीं। ये पांच तत्व का संसार बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांच तत्व का ये शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो इस जड़ संसार जड़ देह के बारे में सत्पुरुष क्या मार्गदर्शन करेगा? इसके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं, इसलिए मार्गदर्शन जीव के वास्ते। ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, इस संसार में या यूं कह लें इस देह में ये जीव मुसाफिर की तरह निवास कर रहा है। और मुसाफिर जानते ही हैं, मुसाफिर कहते ही उसको हैं, जो यात्रा करना शुरू करता है तो लक्ष्य पहले उसका निर्धारित होता है, यात्रा बाद में शुरू होती है। मान लिया उसने बंबई जाना है तो लक्ष्य उसका बंबई बना हुआ है, अब वो यात्रा करता है तो रास्ते में कहीं ठहरता है, कुछ दिन के लिए ठहरता है, फिर अपनी यात्रा पे निकल पड़ता है। तो उसको एक मिनट भी ये संशय नहीं होता कि जिस धर्मशाला में ठहरा है कुछ दिन के लिए वो, ये मेरा घर है, तो ये संशय नहीं होता। ये देह भी इसी प्रकार से है, मेरी मंजिल ईश्वर है, इस जीव की मंजिल ईश्वर है, इसने ईश्वर तक पहुंचना है। और उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये देह रूपी धर्मशाला कुछ दिन के लिए ठहरने को मिली है। जितने दिन की परमिशन मिली है आपको इस धर्मशाला में ठहरने की, ये अवधि तो पूरी हो जाएगी। वो अवधि दो दिन की हो सकती है, दो साल की हो सकती है, बीस साल की हो सकती है, पचास साल की हो सकती है, जो भी अवधि है इस देह। उस अवधि के पूर्ण होते ही जीव को ये देह छोड़नी पड़ेगी, फिर बाकी यात्रा के लिए फिर नई देह मिलेगी उसको। विचार करने की बात यह है, जो देह मुझको ईश्वर प्राप्ति के लिए मिली है, ये देह इस जीव को दुनिया के किसी काम को करने के लिए नहीं मिली है। ईश्वर ने इसके लिए एक ही उद्देश्य रखा है जीने का, कि तूने इस देह के का यूज करके तुम्हें ईश्वर प्राप्ति करनी है, ईश्वर तक पहुंचना है, ये साधन है। चाहे इसको धर्मशाला समझ लो, चाहे इसको ट्रेन समझ लो, मंजिल तक पहुंचने के लिए ये साधन है। तो जिस जीव को ये होश हर वक्त बना रहता है, ये ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। और वो ईश्वर भी कैसा है, जो मुझको गाइड कर रहा है, जो जीव को गाइड कर रहा है, वो जीव के संग ही मौजूद है, वो इस देह के अंदर स्वयं विराजमान है। महाराज जी खुद भी कह रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाटोगा। तूने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अर्थात उसके आज्ञा पालन करके अंतर्यामी ईश्वर तक, अंतर्यामी गुरु तक तूने पहुंचना। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं, एक ही चीज। इसीलिए आपको वाणी याद दिला रही है, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। मैं तो गधे घोड़े की तरह से संसार का वजन ढो रहा हूं, परिवार का वजन ढो रहा हूं और देह की यात्रा पूरी कर रहा हूं, कहां मुझे होश है कि प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। मैं तो इसको दुर्लभ समझता हूं, जैसे और मरते हैं परिवार बसाते हैं खाते पीते हैं, ऐसे मैं भी परिवार बसाता हूँ, खाता पीता हूँ, कमाता हूँ, मर जाता हूँ। ये तो साधारण जन्म हुआ ना। सतपुरुष तो उसको मनुष्य जन्म कहने को भी तैयार नहीं है, वो कहते हैं ये तो पशु जीवन है जो तुमने व्यतीत किया। तुम जो तूने जीवन व्यतीत किया संसार में, बड़ी अच्छी प्रकार किया चाहे बड़ी बुरी प्रकार किया, लेकिन ये पशु जीवन, वो तो इसको मानव जीवन कहते ही नहीं। क्योंकि मानव देह जिस वास्ते दी गई है उसकी तो चीज को समझ ही नहीं, उसको समझने की कोशिश ही तुमने नहीं, और कुछ बातें सीख भी नहीं तो अहंकार कर लिया मैं बहुत जानता हूं। तो हर वक्त तेरी समझ कहां खड़ी है, तेरी होश कहां खड़ी है? तो हर समय इस होश के साथ जी रहा है कि मैं देह हूं, या इस होश के साथ जी रहा है कि मैं इस देह के बंधन में फंसा हुआ जीव? और माँ जी कहते हैं कि प्रेमी, इस देह को जो तू जिंदा देख रहा है, चलता फिरता देख रहा है, वो ईश्वर शक्ति के कारण है। और वो ईश्वरीय शक्ति, वो ईश्वरीय सत्ता तेरी देह के रोम रोम में विद्यमान है। एक रोम को भी उस शक्ति से खाली नहीं है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या मुझको कभी इस बात की होश आती है? नहीं आती है। इसीलिए मेरे अंदर हर चीज का अहंकार हुआ था। चार अच्छी बातें करने लगूं उसका अहंकार, चार अच्छी किताबें पढ़ लूं उसका अहंकार, चार अच्छे कपड़े पहन लूं उसका अहंकार, अच्छी नौकरी मिल जाए उसका अहंकार, अच्छा बिजनेस मिल जाए उसका अहंकार, परिवार बड़ा अच्छा मिल जाए उसका अहंकार, जो भी चीज जिससे मेरा संबंध बनता है उसका अहंकार धारण कर लेता हूं। क्योंकि प्रैक्टिकल फैक्ट मेरे बारे में यह है कि मैं मदहोश हूं। जो जीव अपने आप को देह करके समझता है, ये प्रक्रिया उसकी ऑटोमेटिकली होती है। मैं देह हूं ऐसा ख्याल नहीं करता, वो देह ही है, ये उसका जीवन बन चुका। तो अब बताइए मुझे, जब आपको पहले अपने बारे में ही होश नहीं है तो आपकी ईश्वर भक्ति कैसे होगी? विचार करके देखो कैसे। यदि हम जिज्ञासु की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उसको अपने बारे में होश होना चाहिए ना कि मैं कौन हूं, कि दूसरा होश होना चाहिए कि मेरा बंधन क्या है, क्यों मुझे ईश्वर चाहिए। जो जिज्ञासु है उसके अंदर विवेक बड़ा प्रबल होता है, स्थायी विवेक होता है उसके अंदर। उस विवेक के प्रकाश में वो एक मिनट भी अपने बंधन को नहीं भूलता। इस दीर्घ बंधन में हूं, कितने जन्मों से इस बंधन में मैं फिर रहा हूं और आगे भी कितने जन्म तक फिरता रहूंगा, ये वर्तमान जन्म में मुझे होश आया है तो इसके टाइम का मिसयूज मैं कैसे कर सकता हूं। बड़े संसारी कर्तव्य होंगे, बड़े संसारी कार्य होंगे, लेकिन जो जिज्ञासु है उसको कोई उलझन भी रोक नहीं सकती। तो हर स्थिति से संघर्ष करके जिस काम के लिए संसार में आया वो काम करके ही छोड़ता है। दुनिया की कोई ताकत उसको उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। वो कभी बहाना नहीं बनाता कि क्या करूं, मेरा प्रारब्ध भी ऐसा था कि पूरी जिंदगी मैं संसार में फंसा रहा। ये अविवेकी लोगों की बातें हैं, ये विवेकी लोगों की बातें नहीं। विवेकी जीव ये सेंटेंस कभी नहीं बोलेगा, क्या करूं संसार में इतनी चेतन थी मेरी, मुझको अपना होश ही नहीं आता। इसीलिए जिज्ञासु यदि हमने बनना है, हैं तो नहीं है, जिज्ञासु यदि हमने बनना है तो सबसे पहले जो गुरुदेव हमारे बारे में और ईश्वर के बारे में और संसार के बारे में विज्ञान समता विलास में पेश कर रहे हैं, नाम तो हमने अन्य शास्त्रों का भी सुन रखे हैं, गीता का भी नाम सुन रखा है, छह शास्त्र का भी नाम सुन रखा है, उपनिषदों का भी नाम सुन रखा है, वेदों का भी नाम सुन रखा है, लेकिन समझ तो नहीं है उसको, समझ नहीं। जिस गुरु पर हमने विश्वास किया है तो गुरु पर विश्वास का मतलब ही एक होता है उसके ज्ञान पर पूर्ण विश्वास। क्योंकि हमारे लिए तो ज्ञान ही गुरु है, अपने बारे में मुझको समझ कौन देगा बताइए। गुरु की बात तो यदि मैं ठीक समझूं तभी तो अपने बारे में समझ आएगी मुझको। इसीलिए समता विलास को समझना बहुत जरूरी है। बड़े प्रेमी मिलते हैं जो लेसन के लेसन पढ़ जाते हैं लेकिन बात करो तो समझ कुछ नहीं होती उनको। शास्त्र समझने में इतने सरल नहीं होते, इसलिए कई चैप्टर्स महाराज जी ने बड़े बड़े लिखे हैं। उसके अंत में लिखा है ये ज्ञान बड़ा गहन है परंतु सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई। ज्ञान तो गहन ही होगा वो। अब देखना ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल मैं जीव हूं, ये देह मुझको साधन के रूप में दी गई है ईश्वर प्राप्ति के लिए, ये कोई बात कठिन है क्या। लेकिन इस एक बात को समझने में मैं समझता हूं ज्यादा नहीं तो कम से कम 95% संगत फेल है, केवल इसी बात को समझने। 5% भी मैं इसलिए कंसेशन दे रहा हूं कि भाई यदि ये कहा जाए कि 99% फेल है तो शायद हमको बुरा लगे, लेकिन फैक्ट यही है कि संगत के प्रेमी भी 95% तो इस एक सेंटेंस को समझ ही नहीं पाते। वो ये जानते हैं सेंटेंस को, सुनाते भी हैं लेकिन खुद इस पर मनन कभी नहीं करते। यदि मनन करते तो जिज्ञासु बन जाते, और जो जिज्ञासु होता है वो संसार के झगड़ों में नहीं पड़ता। उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि संसार के झगड़ों में उलझ जाए। वो तो गुरु की वो बात मानता है। वो प्रेमी दुनिया आदिकाल से ऐसी ही चली आई है, राम आए कृष्ण आए बड़े अवतार आए, दुनिया वैसी की वैसी ही है। वो प्रेमी अपनी निबेड़, मोटी भाषा में महाराज जी ये बात कहा था, जिज्ञासु तो समझ लेगा कि महाराज गुरु क्या कह रहा है, सत्संग ही नहीं समझेंगे इस बात को क्या कह रहा है। तो इतना कीमती वक्त मानव जन्म का हम लोगों के झगड़ों में, लोगों की बातों में, दुनिया के कामों में इसको खर्च कर देंगे। यदि मैं जिज्ञासु हूं तो मेरे अंदर सबसे पहली बुद्धि तो ये होगी कि मैं जीव हूं और देह के बंधन में हूं, और देह का मतलब होता है स्थूल देह और सूक्ष्म देह। जो आपको पहले ही बताया गया है कि स्थूल देह तो हम तो दिख रहे हैं, और सूक्ष्म देह कौन सी होती है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये जो सूक्ष्म देह है, तो जीव इस सूक्ष्म देह के बंधन में भी तो है ना, तो दोनों मिला के देह कही जाती है। अध्यात्म में जब देह की बात होती है तो सूक्ष्म स्थूल मिला के देह कही जाती है। तो जिस मन का मैं बड़ा स्वागत करता हूं, जिस मन के अंदर मेरी इच्छाएं पलती हैं, मेरा स्वभाव पलता है, और किसी व्यक्ति को देख लीजिए आप, यदि इसको 20-30 साल से भी देख रहे हो, आप देखेंगे हर जीव या यूं कह लिए हर मनुष्य एक स्वभाव के बंधन में या स्वभाव के वशीभूत होकर जीवन व्यतीत करता है। उसका जो मूल स्वभाव है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो इतने गहरे बंधन में हम हैं, तो अपने ही मन के बंधन में हो, अपने ही इंद्रियों के बंधन में हो, अब बताइए इस बंधन से जो चाल मेरी है, जैसे मैं चल रहा हूं, कभी मुक्त हो पाऊंगा? यहां आके पता लगता है कि महाराज जी ने जो वासना छेदन विवेक में वाक्य लिखा कि बड़े बड़े योग दान तप धारण करने वाले जीवों का पहले से भी ज्यादा पतन हो जाता है। हम तो संसारी जीव हैं, संसारी कर्म करते हैं, लेकिन वो तो वो गुरु क्या कह रहा है? ये बड़े बड़े तप करने वाले, ये विवेक इनका कायम नहीं रहता, ये देह करके तप करते हैं। वो तप इनके मैं भाव को, मैं देह हूं इस भाव को और गहरा कर देता। मैं 9 व्रत करता हूं, मैं एक भी झूठ नहीं बोलता हूं, फिर लोगों को दिखाता है मैं कैसा हूं। लोगों को क्या दिखाएगा तू, देही तो दिखाएगा, लोग तुझे क्या देखेंगे, तेरी देही को तो देखेंगे। इसीलिए यदि आपके अंदर विवेक नहीं है अपने ही बारे में, कैसे आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओ? इसीलिए शब्द तो बड़ा आसान है जिज्ञासु, किसी को भी ईश्वर मार के कुछ भी करता हुआ देखते हैं, कहते हैं ये बड़ा अच्छा जिज्ञासु है, क्योंकि संत अविलास पढ़कर देखो तो पता लगेगा कि जिज्ञासु कैसे करते हैं। महाराज जी को ये चैप्टर लिखने की क्या जरूरत है, जिज्ञासु का निर्मल प्राण को गहराई से पढ़ो कि मैंने गुरु धारण किया है, किसी वास्ते धारण किया, मैंने भी जिज्ञासु बनना है ना। मैंने भी जिज्ञासु बनना है, इसलिए मैंने गुरु धारण किया, और जिज्ञासु का मतलब एक ही होता है, ईश्वर के लिए जीना। यदि वो जिज्ञासु है तो उससे कहो भाई दो चीजों में से एक सिलेक्ट कर ले, या इस संसार को छोड़ दो जो भी तुमने संसार बना रखा है, या तो करतार को छोड़ दो। यदि जिज्ञासु है तो संसार को छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि संसार से बाहर चला जाएगा, संसार में तो रहेगा वो, जब देह ही संसार है, देह संसार एक चीज है तो कहां संसार को छोड़ेगा। लेकिन जो संसार का प्रोग्राम जिसके लिए वो जी रहा है सुखों के लिए, वो क्या कर देगा यदि जिज्ञासु है तो? तो बताइए मुझे, जिज्ञासु बनना क्या साधारण बात है? जिज्ञासु बनना क्या साधारण बात है? इसलिए एक एक कर्म जो गुरु यूज कर रहा है शास्त्रों में, उसके सही अर्थ क्या है, जिसका गहरा अध्ययन नहीं करोगे आप, एक जिज्ञासु का मीनिंग सीखना है तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिज्ञासु का निराधिकरण, तब आपकी समझ में आएगा जिज्ञासु कहते किसे हैं। फिर कभी नहीं कहोगे मैं जिज्ञासु हूं, फिर पूरी जिंदगी ये नहीं कहोगे मैं जिज्ञासु हूं। यही करते हैं हम लोग, जो आम सत्संगी जीव होते हैं वो यही करते हैं। मैं ईश्वर पुराण हूं, मैं ईश्वर विश्वासी हूं, सारे एडजेक्टिव ध्यान कर लेते हैं। यदि संतरदास पढ़कर देखो कि ईश्वर विश्वासी किसे कहते हैं, ईश्वर पुराण किसे कहते हैं, तो हर आइटम में आप फेल हो जाओगे, हर आइटम में आप फेल हो जाओगे। यदि समता विलास के हिसाब से ही आप उस परिभाषा को सीखोगे ईश्वर विश्वासी किसे कहते हैं, ईश्वर विश्वासी की यही परिभाषा संत विलास ने लिखी, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जीता। हम जहां खड़े हैं हमारे लिए ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है ईश्वर को मानते नहीं है, ईश्वर विश्वास नहीं है, लेकिन जैसा विश्वास गुरु बात कर रहा है ईश्वर विश्वास नहीं है, मैंने वैसा बनना है ना, मैंने वैसा बनना है, मैं बहुत कंसेशंस ले रहा हूं तो फिर भी अपने आप को ईश्वर विश्वास ही कह रहा हूं। तो गहराई से जब गुरु की बात पढ़ूंगा, तो गहरा मनन करूंगा, तो यही परिभाषाएं निकल के संतावलास में आपके सामने आ जाएंगे, फिर आपको शर्म आएगी अपने ऊपर कि मैं क्या लोगों को उपदेश देता रहता था, मेरे अंदर खुद तो ईश्वर विश्वास नहीं है, दूसरों को ईश्वर विश्वास को उपदेश देना। तो अपने अंदर एक लज्जा का भाव आता है, गलतियां इस प्रकार की हम सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कोई हमसे हमें कोई बचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे हम अलर्ट होते चले जाते हैं, अपनी करनी पे हमको और गहरी लज्जा आनी शुरू हो जाती है, पहले से ज्यादा लज्जा आना शुरू। जैसे जैसे आपके अंदर विवेक स्थान होगा, आपको अपने ऊपर लज्जा आनी और गहरी हो जाएगी, अपना होश आपको ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम जहां खड़े हैं वहां तो गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं, इस देह के अहंकार से मुक्त होने के लिए, देह के बंधन से मुक्त होने के लिए पहले तुझको साधारण रूप में पांच नियम बताओगे कि जीवन में साध्वी धारण कर, और साध्वी का मतलब एक ही होता है कि इच्छाओं को कम करने की कोशिश कर, अपनी जरूरतों पर आधारित जीवन बना, इच्छाओं पर आधारित जीवन मत बना। यदि तूने ईश्वर मार्ग पर चलना, तो ये पांच नियम उन्होंने इसी वास्ते दिए ना कि ईश्वर प्राप्ति में ये सहायता करें तेरी, उसी दृष्टिकोण से हमने इन नियमों को देखना है। शादी का मतलब यही है, चाहे कपड़े की बात आती है तो महाजी एक ही बात कहते हैं, प्रेमी बस ऐसे पहन कि तुझको पहनकर ये ना लगे कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं। यदि तू सुंदर लग रहा है वस्त्र पहन के तो फिर ये मार्ग तेरे लिए बेकार, क्योंकि तेरे इस अहंकार को, तेरे इस अहंकार की वृद्धि हो रही है कि मैं देह हूं। यदि मैं सुंदर लग रहा हूं तो ये अहंकार तेरा कपड़े पहनकर बढ़ा या नहीं बढ़ा कि मैं देह हूं। ऐसी बातचीत करने भी माँ जी कहते हैं कि जो अंदर हो वो बाहर बात करो, अर्थात सरल लोग बनावटी भाषा नहीं कि अपने को दिखा कर चल रहा हूं हूं मैं कुछ और। यदि सतमार्ग पर चलना है तो तुम्हें अंदर बाहर से एक होना चाहिए। इसको हम कहते हैं ना, शहर में लोग चालाक होते हैं, चालाकी तेरे अंदर रहनी ही नहीं चाहिए। सरल स्वभाव नमन कुटिला, जैसे साधारण बालक होता है उसके मन में कहां कुटिलता होती है, कहां चालाकियां होती है, सरल स्वभाव होता है। ऐसे हम कहते हैं जो गांव शहर से बहुत दूर हो तो वहां के लोग भी सरल स्वभाव होते हैं, उन्हें चालाकियां आती नहीं, शहर वाले बड़े चालाक होते हैं, गांव वालों को ठग लेते। तो सरलता का मतलब है कि बोलचाल में साधन। इस प्रकार उस साधु का उद्देश्य एक ही है कि ये जो मैं फंसा रहता हूं बनावट में, मेरा सरल जीवन हो जाए। और सरल जीवन में क्या होगा, आपको ईश्वर की याद करने में सहायता मिली। माजी कहते थे प्रेमी तुझे कमाना भी कम पड़ेगा, यदि सादा हो जाएगा तो कमाना भी कम पड़ेगा, ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो वक्त मिलेगा ईश्वर का सिमरन करने का, वक्त मिलेगा निष्काम सेवा करने का। अब सत्य की बात करते हैं, वो सत्य कहते हैं एक ईश्वर, वही केवल सत्य। तो उस एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, तो माँ सत्य की बात करते हैं, सत्य का पालन करो, तो वहां सबसे पहला है कि एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा। जब एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा होगा तो करने वाला वो है, जीवन में सुख आएंगे दुख आएंगे, काम बनेंगे बिगड़ेंगे, अच्छी परिस्थितियां प्राप्त होंगी बुरी परिस्थितियां प्राप्त होंगी, वो सब घटनाक्रम तेरे लिए ईश्वर निर्धारित करेगा। इसीलिए जन्म लेते ही प्रारब्ध का पैकेज ईश्वर हमारे साथ बांध देता है और उस प्रारब्ध के अनुसार ही मेरी देह का संचालन करता है अंदर बैठा बैठा। तो जिसको ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर प्राणता जिसके अंदर है, वो हेराफेरी क्यों करेगा बताइए। लोग धोखा देते हैं देते रहे, वो धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसे अंदर ईश्वर का आभास है कि मेरा मालिक अंदर बैठेगा, करने वाला वो है, मैं धोखा क्यों नहीं दे सकता। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सत्य का पालन कर सकता है जो ईश्वर के भरोसे जीता है। फिर मां जी सेवा की बात करते हैं। देखो ईश्वर प्राप्ति के सूत्र है ना, सेवा के बाद क्यों करते हैं कि मेरे कर्म करने की एक आदत बनी हुई है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मैं कर्म करने के लिए प्रेरित होता हूं, चाहे वो परिवार पालने वाली बात हो, चाहे अपनी देह पालने वाली बात हो, स्वार्थ के वशीभूत होकर सारे कर्म करता हूं पूरा जन्म। वो कहते हैं कि तू निष्काम सेवा करने की आदत है, अर्थात दूसरे का दुख तुझे दिखाई पड़ना चाहिए और उससे कोई तेरी स्वार्थ पूर्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह तू किसी का दुख दूर करने की कोशिश कर, निष्काम सेवा करने की कोशिश कर। उससे क्या होता है, तेरे में जो स्वार्थ कर्म करने की जो प्रेरणा होती है, स्वार्थ के वशीभूत होकर ही तू कर्म करता है, वो आदत तेरी धीरे धीरे बढ़ गई। फिर तू संसार में कर्तव्य भाव से जिएगा। जैसे परिवार मेरा है तो परिवार के प्रति कोई तो कर्तव्य होगा। मान ली मेरे माता पिता बूढ़े हैं तो मेरा क्या कर्तव्य कि उन माता पिता का मैं उसी प्रकार पालन पोषण करूं जिस प्रकार कभी मैं नादान था, बालक था, अपने काम खुद नहीं कर सकता था, उस समय माता पिता ने जैसे मुझे पाला, किस प्रेम से पाला उन्हें, मैं उसी प्रेम से उनकी सेवा कर सकूं, ऐसा मेरा स्वभाव बन जाए। निष्काम होते होते ऐसा स्वभाव बन जाए। आजकल क्या डिफेक्ट आ गया समाज में, डिफेक्ट ये आ गया कि हमारी स्वार्थ दृष्टि गहरी हो गई। इसलिए माता पिता जब बूढ़े होते हैं तो मेरे अंदर एक विचार उठता है कि अब मेरे ये किस काम के, मेरे तो किसी उपयोग का नहीं रहे। जब तक वो मेरे उपयोग के थे मुझे उनकी कीमत थी, अब वो उपयोग के नहीं रहे, मान लिया उनकी 80 साल आयु हो गई, तो कहता हूं बस ये बोझ ही है, संसार से जाए तो जान बचे। ये एक आम बात हो गई आज, सबके अंदर ये भावना नहीं होती, लेकिन आज ये आम बात हो गई। इसीलिए जो कभी यूरोप में सुना करते थे कि ओल्ड एज होम हुआ करते थे, अब भारत के अंदर ओल्ड एज होम उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए मां जी अगला चौथा सूत्र दे रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को चलने के लिए, सत्संग। सत्संग का मतलब ये होता है कि सत विचारों का संग करना। तो सत विचारों का संग दो ही तरीके से किया जाता है, या तो किसी जिज्ञासु के पास, किसी भक्त के पास बैठकर उसकी बातें सुनने का मौका मिले, चाहे वो आश्रम के द्वारा हो, चाहे वो अकेले में बैठ के हो, चाहे वो ग्रुप में बैठ के हो, लेकिन बात एक ही है कि सत विचारों को समझने का मौका मिले। और इसमें सबसे ज्यादा जो सहायता करता है वो व्यक्ति का शास्त्रों का स्वाध्याय। सत्पुरुषों की जो पुस्तकें हैं जिसको हम शास्त्र कह देते हैं, ग्रंथ कह देते हैं, सत्पुरुषों की बातें जहां लिखी हुई हैं उनको एकांत में पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। कभी बातचीत भी सहायता करती है। यदि खुद आपका कोई अध्ययन नहीं है, जैसे कोई स्कूल में विद्यार्थी केवल लेक्चर सुनता हो, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता हो, तो किस दर्जे का विद्यार्थी बनेगा आप खुद कल्पना कर सकते हो। तो हमारे विवेक के लिए यही आस रहेगी, तो उसको गहराई से समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो कुछ का कुछ समझते रहेंगे, उसका भी एक अहंकार पाल लेंगे, मुझे बड़े कोटेशंस याद हैं, मैं सब समझता हूँ, 10 बार पढ़ चुका हूँ, मुझे सब पता है कहाँ क्या लिखा हुआ, ये अहंकार पाल लेंगे। मैं तो संत अभिलाष पिछले 50 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज से कोई, आज कोई पूछे भी एक पैराग्राफ याद हो, मुझे पूरी संत अभिलाष से एक पैराग्राफ भी याद, 50 साल की स्टडी के बाद। तो शास्त्रों को याद करने की जरूरत नहीं होती, शास्त्रों का सार आपके मन के अंदर बस जाना चाहिए। शास्त्र पढ़ने का मतलब यह है, हो सकता है आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, यदि ऐसे गहराई से पढ़ेंगे तो 20 साल बाद भी आपको ऐसा लगेगा मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मतलब इतना फ्रेश लगेगा वो आपको जैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। यदि आप उसकी गहराई में डूब कर पढ़ेंगे उसको, तो मेमोरी पर बोझ पड़ता ही नहीं आपकी, आप पढ़ने के बाद तुरंत ही भूल सकते हो, इधर पढ़ा होगा भूल भी गया, इन्हीं का सार आपके अंदर जा चुका होगा, सार जा चुका होगा। इसलिए शास्त्रों का गहराई से मनन करने की दृष्टि से पढ़ना, शास्त्रों की पढ़ाई ऐसे है। ज्यादा पढ़ा है आपने, कितना पढ़ा है ये काउंट नहीं करता, कैसे पढ़ा है ये काउंट करता। सत्पुरुषों की बातों को बड़ी गहराई से पूरी जिंदगी पढ़ना चाहिए, वो शौक मेरा कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि मैं यही कहूंगा कि पहले मेरे अंदर शौक कम था पढ़ने का, सत्पुरुषों की बातों का, अब शौक ज्यादा है। शौक क्यों ज्यादा है? क्योंकि अब उनकी बातें समझ में आने लगी हैं, वो कह क्या रहे हैं। पहले पढ़ते थे लेकिन अब समझ में आ रही है तो कह क्या रहे हैं। इसलिए उनको पढ़ने में रुचि मन बुद्धि की बढ़ रही है, घट नहीं गई। नहीं तो 50 साल वही पुस्तक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आदमी, सोचेगा 50 बार तो पढ़ते थे उनको, अब पढ़ने क्या जरूरत। लेकिन मैं देख रहा हूं प्रैक्टिकली तो मेरी रुचि 1% भी कम नहीं हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। तो शास्त्र में भी रस होता है पढ़ने में, जैसे वाणी में पढ़ने में बहुत लोगों को रस आता है, सुनने में भी रस आता है, लेकिन संतावलास को पढ़ने में सुनने में रस नहीं आता। लेकिन मैं तो प्रैक्टिकली देता हूं उसको पढ़ने में रस आता है। तो ये ईश्वर के साथ डायरेक्ट वचन है, ईश्वर से निकले हुए वचन है, मेरा गुरु है वो, शास्त्र मेरा गुरु है, मुझको ईश्वर तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने मेरे वास्ते वो वचन प्रकट किए। देखो ना, इसकी वास्तविकता तो यही है, ईश्वर ने मुझको, मुझे जीव को अपने पास तक पहुंचने के लिए ये मार्गदर्शन मुझको दिया है। तो ये गुरु हुआ नहीं हुआ, ये बोलता हुआ गुरु। तो सत्संग का मतलब ये है कि सत विचारों का संग करना और उन सत विचारों के अनुसार अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का निर्माण करना, इसका नाम है सत्संग। और अंतिम बात तो जानते हैं सत्सिमरन, जिस ईश्वर प्राप्ति के लिए मैंने ये चारों नियम पालन करने हैं, तो इसका ध्यान हर वक्त अंदर बना रहे कि प्रभु अंदर विराजमान, मेरे मालिक हैं, मेरा वो सर्वस्व है, उसके बिना तो जिंदगी निरर्थक है, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। कितना भी सफल जीवन मैं संसार में संसारियों की दृष्टि में व्यतीत कर लूं, कि मेरी अपनी दृष्टि में वो एक शर्मनाक घटना मेरे सामने नजर आनी चाहिए कि मैंने संसार के लिए जीवन व्यतीत किया, इससे बड़े शर्म की बात और क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए महाजी स्टार्ट कर रहे हैं, देखो किस आयु से, 15 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक लिख कर दे रहे हैं। ये संसारी लोग हैं, अपने हिसाब से ये सोचेंगे, 10 मिनट भी सिमरन कर लेंगे, कहेंगे हमने सिमरन कर लिया। तो उन्होंने लिखना पड़ा, दुनिया के किसी शास्त्र में ये बात लिखी नहीं गई कभी, पहली बार महाजी ने संतरदास ने ये बात लिखी, क्योंकि वक्त ऐसा है कि कम से कम 15 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी है। लाजमी का मतलब होता है कंपलसरी। अब बताइए कहीं कोई च्वाइस की बात कर रहा है सब कुछ? तो हम लोग क्या कहते हैं, महाजी को क्या पता आज क्या जमाना आ गया, इतनी मुश्किल से रोजी रोटी कमाई जाती है, कैसा संसार है, कैसा समाज है, उसके अनुसार रहना पड़ता है, सारे हम चीजें है वो। उसके लिए जो कुछ तर्क है हम इकट्ठे कर लेते हैं और कहते हैं भाई एक घंटा भी आज के वक्त में यदि हम सिमरन कर लें बहुत समझे, तो ईश्वर तो हमारे लिए मूर्ख हो गया ना। ये तो वहां तो ईश्वर ने कही ना, महाजी महाजी का मतलब कोई आदमी थोड़ा है, महाजी का मतलब ईश्वर। ईश्वर हमको लिखकर दे रहा है ये कि कम से कम एक घंटा सुबह एक घंटा साय का समय करना, कम से कम है वह मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते आप, मिनिमम का मतलब होता है उससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। फिर भी यदि समझ में ना आए तो गुरु लिखकर दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। अरे खाने से तो देह चलेगी मेरी, लेकिन वो कहते हैं कि देह तो ये जब सिमरन के लिए मिली है तो सिमरन नंबर एक पर है, तो खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। फिर खाने का टाइम निकल जाए कोई बात नहीं है, सिमरन हो जाना चाहिए। घर वाले सब खा ले कोई बात नहीं है, बाद में खा ले पेट भरना है, तेरे जीने का पर्पज तो दूसरा ही, तू कोई बहाना नहीं बना। यदि खाने के वजह से तेरा सिमरन रुक रहा है तो खाने का त्याग कर दे, सिमरन कर दे। तो खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना, इसका मतलब यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, टॉप प्रायोरिटी का काम है मेरी दिनचर्या में। इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे टाल सकता हूँ, मैंने बाकी चीजें एडजस्ट करनी है, मैं सिमरन को ही एडजस्ट कर देता हूँ। दुनिया मेरी वैसी चलती रहती है। ऐसा व्यक्ति पूरे जन्म में कभी जिज्ञासु बन पाएगा वो दिन उसके जन्म में नहीं आएगा। ईश्वर प्राप्ति तो बात की बात है, वो जिज्ञासु ही नहीं बन पाएगा। फिर भी बात समझ में नहीं आती तो संतरदास के अंत में लिखा गुरुदेव ने, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। इसका मतलब यदि सिमरन से आप एडजस्टमेंट करते रहे जिंदगी भर तो आपने सुसाइड कर लिया, मानव जन्म आपने जिया ही नहीं। फिर मानव जन्म आपने जिया ही नहीं, आपने सुसाइड कर लिया, या यूं कह लें पशु जीवन व्यतीत कर लिया है। तो वो जिज्ञासु तो पता नहीं हम कब बनेंगे, जो संत रविदास में लिखा हुआ है इसका बारे में चैप्टर लिखा गया है, पढ़कर देखें तब पता लगेगा। लेकिन इतने जिज्ञासु तो हम बन सकते हैं कि हर समय होश बना रहे कि ये मानव जन्म अंतर्यामी ईश्वर तक पहुंचने के लिए मिला है, अंतर्यामी ईश्वर तक, तो बाहर नहीं है कहीं। जिसने उस ईश्वर का अनुभव किया इस देह के अंदर ही किया। तो उस तक पहुंचने के लिए ये मानव देह मुझको दी गई और ये विज्ञान दिया गया है गुरु के द्वारा कि तू जीव है। इस स्थूल देह और सूक्ष्म देह के बंधन में है, इसीलिए यह मौका तू मत गवा। इस मानव जन्म में तेरी बुद्धि को इतनी ताकत दी गई है कि तू ये बात सीख सके कि तू जीव है और तेरा मालिक ईश्वर है और तू मन के बंधन में। तो जीव, मन उसका बंधन और ईश्वर, ये तीनों ही इस देह के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए महाजी इस देह को मंदिर कह रहे हैं। क्यों नर मोह मंदिर में सो, ये मैंने मंदिर की जगह मोह मंदिर बना लिया, अर्थात मैं देह हूं इस मोह में मैं जी रहा हूं, तो ये मैं सो रहा हूं। उसको वाणी करिए तो सो रहा है। तो मैंने जागृत होकर मैं जीव हूं हर वक्त ये ध्यान रहना चाहिए। यदि तो उस भाव को आप मेंटेन रखोगे तो सबसे पहले तो देह का अहंकार करते ना दिखा दिखा के लोगों को, सबसे पहले तो ये आपको चोट लगेगी मैं कर क्या रहा हूं। क्या शक्ल लोगों को दिखाता घूम रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को अंतर्यामी की प्रभु की याद ऑटोमेटिकली आती रहती है। जो अपने जीव भाव में रहकर जीवन व्यतीत करेगा उसके अंदर ईश्वर भाव ही हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ईश्वर और जीव एक समय ना मन में चेतना है ना इंद्रियों में चेतना है ना देह में चेतना है, ये जड़ है तीनों की। चेतना जीव के अंदर है और ईश्वर परम चैतन्य है, वो चैतन्य रूप। तो बोलिए कि चैतन्य रूप मैंने बनना है और मेरे कर्म क्या है, सब जड़ वाले कर्म। इसलिए ये काम 24 घंटे का है, ये दो वक्त का नहीं कि सुबह शाम दो वक्त एक एक घंटे सुनने कर लिया हो जाता। जब आप जिज्ञासु बनोगे तो खुद ही पता लगेगा कि 24 घंटे मुझे ईश्वर की याद आती है। मैं चाहूं भी तो चाह करके भी नहीं भूल सकता, कितना भी संसार में बिजी जाऊं लेकिन ईश्वर की याद मुझे नहीं भूल सकती। जिज्ञासु को इस बात का पता है, इसलिए वो चैप्टर जिज्ञासु का निर्मलपण संतरदास से जरूर पढ़ें और खुद जिज्ञासु बने और ईश्वर प्राप्ति करें, इसके लिए जीवन जरूर। ओम ब्रह्म।